जय कुंज बिहारी, जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन, जय ब्रज जनरंजन, जय यशोदानंदन, जय ब्रज जनरंजन, जय यमुना तीरवन चारे, जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीरवन चारे, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Jaya Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda Radhe. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupad, 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 Jaya Prabhupad. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol.
Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajaka Acharya Shtotra Sat. His Divine Grace Abhay Charanar Vinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Gokula Nanda Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai Ki Jai Nitai Gaura Premanande Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Srimad Bhagavad Gita, 4th Adhyay, Shlok Sankhya 22 Yadricha Labha Santushtaha Dvandva अतीतः विमत्सरः समः सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते
हरे कृष्ण हम में से कोई बंधन नहीं चाहता है सही है ना हम में से हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि हम मुक्त रहें किसी के ऊपर निर्भर न रहें स्वतंत्र रहें रुकावटें हमारे इच्छा की पूर्ति के प्रयत्न में न आएं परंतु यहाँ पे इस दुनिया में यह संभव नहीं है क्योंकि यहाँ प्रकृति के नियम इतने कड़े हैं कि हर एक जीव को बांध के रखते हैं और बांध कर जीव अपने कर्मों के फलों को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाता है हमने यदि किसी बंदूक से गोली छोड़ी है तो वो गोली कहीं ना कहीं जाकर तो लगेगी बंदूक से गोली निकलने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि अरे गोली वापस बंदूक में जानी चाहिए नहीं गोली जो बंदूक से निकली वो निकली तीर से जो धनुष से निकली वो निकली जो वचन हमारे मुंह से निकल गए वो निकल गए जो कर्म से हमारे द्वारा हो गया वो हो गया अभी उनके फल हमें मिलेंगे निश्चित मिलेंगे इसे कहते हैं कर्म बंधन जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसे वैसे कर्मों के फल मिलते जाते हैं और क्योंकि हमें अनेक कर्मों के फल मिलने हैं और ये शरीर नश्वर है तो जब शरीर का नाश होता है तो हमें पुनः एक दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है जिसमें कि हमारे पूर्वकृत कर्मों के फलों को हम स्वीकार करते हैं इस तरह से कर्म बंधन के द्वारा जन्म मृत्यु का बंधन उत्पन्न होता है हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है और जन्म लेने के लिए हमें एक भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है और जब भौतिक शरीर होता है तो भौतिक शरीर से संबंधित सारे जो दुख हैं जो कष्ट हैं वो हमें भुगतने पड़ते हैं भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मूल रूप से चार प्रकार के दुख हैं जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो जब तक ये भौतिक देह हमारे पास है तब तक ये दुख रहेंगे और जब तक दुख रहेंगे हम सही सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे तो मूल इनका क्या कारण है दुख का कारण है कि हम ऐसे कर्म करते हैं जिनके द्वारा हमें कोई शरीर भौतिक शरीर प्राप्त करना पड़ता है हमें ये ज्ञान नहीं है कि कौन से कर्म हम करें और कौन से कर्म नहीं करें। जब भौतिक कर्म करते हैं, चाहे वो पुण्य हो या पाप हो, तो हमें निश्चित ही उसका फल मिलेगा और पुनः भौतिक शरीर धारण करना पड़ेगा। परंतु यदि हमने जान लिया कि हमें किस प्रकार के कर्म करने हैं या कार्य करने हैं जिसके द्वारा हमें भौतिक बंधन नहीं आएगा, भविष्य में कर्म बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, पुनः हमें कभी भौतिक शरीर धारण करना नहीं पड़ेगा, तो इस दुख के बंधन से हम सदैव मुक्त हो जाएंगे तो कितना अच्छा होता। परंतु ये ज्ञान नहीं है, हमें ये पता नहीं है कि हमें कौन से कर्म करने, कौन से नहीं, किस भावना में करने हैं। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, कई चीजें बताते हैं। यदि हमें वास्तव में बंधन से मुक्त होना है तो हमें क्या करना चाहिए। एक बात है कि कर्म किए बिना कोई भी व्यक्ति यहां नहीं रह सकता, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। तो एक क्षण के लिए भी यहां पे कोई व्यक्ति बिना कर्म किए हुए रह नहीं सकता है। तो जब कर्म करना ही है तो क्यों न हम सीख लें कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए जिसके द्वारा कर्म करते हुए भी हम बाध्य नहीं होंगे, हम बंधन में नहीं पड़ जाएंगे। इस बात का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण यहां दे रहे हैं। तो कहते हैं, सबसे पहले यदृच्छा लाभ संतुष्ट। यदृच्छा मतलब हमारे स्वतः से, हमारे साधारण कर्मों से, साधारण प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले जो भी लाभ है उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए, अति प्रयास नहीं करना चाहिए, और चाहिए और चाहिए, और उतना मिलने के बाद भी संतुष्ट न रहें। ऐसे यदि हम इस भावना से हम कर्म करते हैं कि हम कभी संतुष्ट नहीं होते हैं और हमें और भी चाहिए और वो और मिलने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं, तो फिर ये कर्म बंधन से हम मुक्त नहीं हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हम कर्म करेंगे, यदि हमारी भावना ये है कि और चाहिए, तो क्या होगा, बंधन में हम अटके हुए रह जाएंगे। यदृच्छा लाभ, तो अपने साधारण प्रयास से हमें जो लाभ मिलता है, और दूसरे शब्दों में कहा जाए कि हमारे पूर्व कर्मों से जो उत्पन्न होने वाले लाभ हैं, जो सुख है, जो सुविधा है, जो लाभ है, उससे संतुष्ट यदि हम रहें तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हम क्या देखते हैं कि आदमी जितना भी मिले उसे वो संतुष्ट नहीं रहता, वो और भी चाहता है और भी चाहता है। परंतु हमें संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। पहली बात भगवान कृष्ण यहां इस श्लोक में बता रहे हैं, द्वंद्व अतीतः। दूसरी बात, द्वंद्वों से परे होना चाहिए। द्वंद्वों से परे होने का मतलब है कि जो सुख दुख है, मान अपमान है, इन सब चीजों से परे होने का प्रयास करना चाहिए। जब गर्मी होती है कष्ट होता है, सहन कर लेना चाहिए। जब ज्यादा ठंडी होती है कष्ट होता है, सहन कर लेना चाहिए। जब अपमान होता है कष्ट होता है, सहन कर लेना चाहिए। सम्मान होता है, अच्छा लगता है, सहन कर लेना चाहिए। तो अच्छी चीज को भी सहन करना चाहिए, क्योंकि ये जानना चाहिए कि जब इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, जो अच्छा चीज है वो बुरा बन जाएगा। जो चीज हमें अच्छा लग रहा है इस समय, वो आगे चल के हमारे लिए कष्ट का कारण बनेगा, क्योंकि हमारी जब स्तुति होगी, हमारा जब मान होगा, हम उससे आसक्त हो जाएंगे और चाहेंगे कि और मान हमारा हो, और जब वो नहीं मिलेगा तो बहुत कष्ट होगा, बल्कि मान के प्राप्ति के लिए भी जो प्रयास है उससे भी बहुत कष्ट हमें होगा। इसलिए यहाँ भगवान बताते हैं द्वंद्वों के अतीत या परे हमें होने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमें समभाव रखना चाहिए इन द्वंद्वों के बीच में। तीसरी बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं, विमत्सरः, मत्सर से मुक्त होना चाहिए। दूसरों के प्रति हमारे जीव हृदय में जलन नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। अरे उनके पास कितना धन है, उनके पास कितनी प्रसिद्धि है। भक्ति में भी कभी कभी ऐसी ईर्ष्या उत्पन्न हो सकती है, अरे उनको इतनी सेवा क्यों मिली, हमें नहीं मिली, वो इतने भक्त, बड़े भक्त के रूप में जाने जाते हैं, मेरा कोई सम्मान नहीं करता है, सब लोग उनको प्रणाम करते मुझे प्रणाम नहीं करते हैं। तो ऐसी जो ईर्ष्या की भावना है आध्यात्मिक जीवन में भी आ सकती है, तो भौतिक जीवन की बात तो दूर रही। इसलिए भगवान कृष्ण यह कहते हैं कि मात्सर्य की भावना से, ईर्ष्या और जलन की भावना से हमें परे होना आवश्यक है। चौथी बात जो भगवान कृष्ण यह कहते हैं, समह सिद्ध असिद्ध। सिद्ध और असिद्ध मतलब सफलता और असफलता, ये तो होते ही रहता है ना हमारे जीवन में। कभी कभी हमारे कार्यों में हम सफलता प्राप्त करते हैं, कभी कभी हमारे कार्यों में हम असफल हो जाते हैं, सबके साथ ऐसे होता है। हालांकि हमारा शोक साधारणतः दुनिया में यही रहता है कि असफल क्यों होते हैं। जब सफलता होती है तो भगवान को हम धन्यवाद नहीं देते, तब हमारा बल आता है कि हमारे बुद्धि के कारण, हमारे बल के कारण हम सफल हुए हैं। जब असफल होते हैं तो भगवान को दोष देते हैं कि भगवान आपने हमें सफलता क्यों नहीं दिलाई। तो सफलता और असफलता, इन दोनों का सामना हम सबको करना पड़ता है, परंतु दोनों में भी समभाव रखना चाहिए, समह। तो ये चौथी बात है जो भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं। यदि हमने ऐसे किया, कृत्वा अपि न निबध्यते, कार्य करते हुए भी हम बाध्य या बंधन में नहीं पड़ जाते। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बताते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता, वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह न तो मांगता है न उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उससे संतुष्ट होता है। तो पहले चार वस्तुओं में से जो पहली बात भगवान कृष्ण ने यहाँ कही, यदृच्छा लाभ संतुष्टो, उसकी व्याख्या प्रभुपाद जी यहाँ पे करते हैं। हम क्यों इतना प्रयास करते हैं, हम क्यों इतने चीजें चाहते हैं हमारे जीवन में? क्योंकि हमारे मन में एक असुरक्षा है। लाभ लोभ तो है ही, और चाहिए और चाहिए, परंतु एक असुरक्षित होने की एक भावना है कि यदि इतना ही हमारे पास रहे तो कल कैसे चलेगा। हमारे पास केवल 1,00,000 रुपया है तो इससे कैसे चलेगा, कल कुछ हुआ तो क्या होगा। हमारे पास कोई कहता 10,00,000,000 रुपये हैं, फिर भी उसे चिंता होती है कि कल कैसे होगा। किसी के पास 10,00,000,000 है, फिर भी वो ऐसे सोचता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि हमें संतुष्ट रहना चाहिए, जो भगवान की कृपा से हमें मिला है उसे संतुष्ट रहना चाहिए और अति प्रयास में नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भगवान ही हमारे भरण पोषण करने वाले हैं ना, भगवान की व्यवस्था से ही सारे पशु प्राणी पक्षी कीड़े कीटाणु मनुष्य देवी देवता सभी रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। उनका भरण पोषण कौन करता है, भगवान ही तो करते हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्रीवास ठाकुर, जो कि गृहस्थ थे, चैतन्य महाप्रभु ने उनसे प्रश्न किया कि अरे श्रीवास, आप तो गृहस्थ हो, आपका इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा घर है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा है कि आप घर से बाहर निकलते हो धनार्जन के लिए, धन कमाने के लिए, आपके परिवार के भरण पोषण के लिए। ना तो आपका कोई व्यवसाय है, ना तो कोई आप भिक्षा मांगने कहीं जाते हो या दक्षिणा लेने जाते हो, तो आपका परिवार चलता कैसे है? तो श्रीवास ठाकुर ने कहा कि मेरा परिवार तो भगवान की कृपा से चलता है, मुझे बाहर जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और फिर श्रीवास ठाकुर ने 3 बार ऐसे ताली बजाई। तो महाप्रभु ने पूछा कि 3 बार ऐसे ताली बजाने का तात्पर्य क्या है श्रीवास, ऐसे 3 बार ताली आपने क्यों बजाई इस उत्तर में? तो श्रीवास ठाकुर ने कहा कि 3 बार ताली बजाने के बाद भी यदि मेरे पास भोजन नहीं आए तो फिर मैं गंगा में कूद के अपने गले में कोई भारी वजन डाल के मैं डूब जाऊंगा। श्रीवास ठाकुर कहने लगे कि क्योंकि मैं आपकी सेवा में हूँ, श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन में, श्री कृष्ण की कथा के श्रवण कीर्तन में इतना मग्न हूँ, तो मुझे और किसी चीज़ की क्यों आवश्यकता है? जो भी होना है भगवान करेंगे, तो मुझे बाहर जाके धन कमाने के आदि की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा। और आने के बाद नहीं भी आया, मैं 3 बार ताली बजाने के बाद भी नहीं आया, तो फिर मैं जाके गंगा में डुबकी लगा दूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ श्रीवास ठाकुर की इस बात सुनकर, और उन्होंने कहा कि अरे श्रीवास, तुम्हें इस तरह से अपने जान को, अपने प्राण को त्यागने की कभी आवश्यकता नहीं होगी। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ, कभी लक्ष्मी देवी को स्वयं भी निर्धन होना पड़े, फिर भी आपके घर में कभी गरीबी नहीं आएगी, क्योंकि आपके हृदय में इतनी श्रद्धा है भगवान के प्रति, और ये श्रद्धा है कि भगवान मेरा भरण पोषण निश्चित करेंगे, ये श्रद्धा ही आपके परिवार को निर्धन होने से बचाएगा। तो श्रीवास ठाकुर को इतनी मजबूत सुदृढ़ श्रद्धा थी, गोपतृत्व वर्णम। वैसे चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया है कि भगवान के चरण कमलों के प्रति शरणागति के अनेक लक्षण हैं, 6 लक्षण हैं, उनमें से एक ये है गोपतृत्व वर्णम, अर्थात ये अटूट श्रद्धा कि भगवान कृष्ण ही मेरा भरण पोषण करेंगे। यदि मैंने भगवान श्री कृष्ण की सेवा की, सतत मैं उनकी सेवा में रहा, तो मेरा भरण पोषण, मेरा जीवन निर्वाह की जो का प्रश्न है, वो भगवान देख लेंगे, संभाल लेंगे। तो वे भगवान ने भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक को कहा, अनन्यास चिंतयंतो माम ये जना परियुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति नित्य रूप से, अनन्य भाव से मेरा चिंतन मनन करता है और श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्तिमय सेवा में लगा रहता है, तो उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं मैं उनको पूर्ण करूंगा, और जो भी उसके पास है मैं उसकी रक्षा करूंगा। इस तरह से भरण पोषण का सवाल भक्त के लिए कभी नहीं आता, यदि वो श्रद्धालु है तो। यदि कोई श्रद्धालु नहीं है भक्त होने के बाद भी, तो जिस हद तक उसकी श्रद्धा कोमल है, कमजोर है, उस हद तक उसको चिंता रहेगी। प्रभुपाद जी कहा करते थे, जबकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना बस थोड़े साल पहले ही की थी, उन्होंने कहा कि लोगों को ये देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे इतने सारे मंदिर हैं, और ये मंदिर भी बड़े बड़े हैं, और हजारों की संख्या में भक्त हैं जो कि मंदिरों में रहते हैं। उन दिनों में कोई भक्त बाहर नहीं रहते थे, सारे भक्त मंदिरों में ही रहते थे। जितने भी भक्त थे, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, सबके लिए कोई ना कोई छोटी मोटी सुविधा मंदिरों में ही की गई थी। और भक्त लोग उतने छोटे व्यवस्था से संतुष्ट रहते थे। तो प्रभुपाद जी कहने लगे कि लोगों को संसार में, दुनिया में आश्चर्य होता है कि इनका जीवन निर्वाह होता कैसे है। इतने हजारों लोग भक्त हैं इनके, ये लोग ना तो नौकरी करते हैं ना कोई व्यवसाय करते हैं, तो धन कैसे आता है, कैसे ये अपने मंदिर चलाते हैं और किस तरह से ये सारे इन सारे भक्तों का जीवन निर्वाह होता है। तो प्रभुपाद कहने लगे कि क्योंकि सारे भक्त श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, सुबह से रात तक कृष्ण कथा करते हैं, कृष्ण कीर्तन करते हैं, कृष्ण सेवा करते हैं, आलसी नहीं होते हैं भक्त, वो दिन रात मेहनत करते हैं कृष्ण के लिए, इसलिए कृष्ण अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं इन भक्तों के निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, इसलिए उनका भरण पोषण का दायित्व श्री कृष्ण ले लेते हैं। तो भक्तों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। भक्त जाते हैं, खूब कीर्तन करते हैं। उन दिनों में भक्त लोग सड़कों में रोज 6-6 घंटे नाम संकीर्तन करते थे, नगर संकीर्तन करते हुए घूमते थे, प्रतिदिन 6 घंटे। और ऐसे भी अनेक भक्त थे जो सुबह से रात तक पुस्तक वितरण सड़कों पे करते, प्रचार करते, तो बहुत मेहनत करते थे भक्त लोग। तो जो सोचते हैं कि कृष्ण भक्ति एक ऐसे आराम का जीवन है कि इसमें सब आलसी हो जाते हैं, ये सही नहीं है। तो प्रभुपाद कहते थे क्योंकि हमारे मंदिरों में रहने वाले भक्त इतने परिश्रमी हैं और कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण भरण पोषण की समस्या को उनके लिए समाप्त कर देते हैं। बल्कि भक्त लोग स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं, कृष्ण प्रसाद का सेवन करते हैं, बड़े आनंद से रहते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को दुनिया में, बाहर की दुनिया में संशय है कि ऐसे कैसे हो रहा है, तो उसे आके हमारे भक्तों के संग में रहना चाहिए। सारी दुनिया को आश्रय देने के लिए हम तैयार हैं, यदि वो इसी तरह से आके कृष्ण के प्रति शरणागति का जीवन बिताएं। तो हजारों की संख्या में भक्तों ने कभी ये नहीं सोचा कल प्रसाद कहां से आएगा, भगवान व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ, एक सावधानी की बात भी कहना आवश्यक है कि जब ये कहा गया है कि हमें भगवान की सेवा में तत्पर रहना है, अपने आप को व्यस्त रखना है और साधारण परिश्रम से जितना लाभ मिलता है उसे संतुष्ट रहना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आलसी बनना है या कि हमें लापरवाही बनना है। लापरवाही और आलस ये भक्त को शोभा नहीं देता, और ऐसे मानसिकता या ऐसे आदत की बातें यहाँ इस श्लोक में नहीं की गई है, ना कहीं भगवान कृष्ण ऐसी बातें करते हैं। बल्कि भक्त को बहुत ज़्यादा परिश्रमी होना चाहिए भगवान कृष्ण के लिए, कृष्ण के संतुष्टि के लिए। और भक्त को जानना चाहिए कि वैसे भी न केवल भगवान सब कुछ हमें दे रहे हैं, भेज रहे हैं, परंतु भगवान हर चीज इस प्रकृति के द्वारा भी, उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई है। यदि कोई व्यवसाय भी करता है तो व्यापारी को जानना चाहिए कि ग्राहक भगवान भेज रहे हैं हमारे पास, इसलिए हमें चाहिए कि हमारे व्यवसाय में भी हम इतना परिश्रम न करें कि हमें न हमारे जप के लिए समय है, न मंदिर आने के लिए समय है, न प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने के लिए समय है, न भक्तों का संग करने के लिए समय है, यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों के साथ संग करने के लिए भी समय नहीं है, तो किस लिए हम व्यापार कर रहे हैं। हमें श्रद्धा होनी चाहिए कि ईमानदारी का परिश्रम जितना चाहिए उतना अवश्य करना चाहिए, जैसे प्रभुपाद ने यहाँ पे कहा है। परंतु इतना परिश्रम नहीं करना चाहिए कि भक्ति करने के लिए, मंदिर में आने के लिए, भक्तों का संग करने के लिए हमें समय न मिले। ये अवश्य करना चाहिए, नहीं तो बाहर की दुनिया में ऐसे व्यापार में, नौकरी में आदि परिश्रम करने वाले लोग बहुत सारे हैं। केवल संसार में भरण पोषण के लिए हमें मनुष्य देह नहीं मिला है, मनुष्य देह मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए। ज्ञाने प्रयासम उदपस्य नमन्त्य एव जीवन्ति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवान मनोभिर ये प्रायसो जित जितो प्यसित स्त्री लोक्याम। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत में प्रार्थना करते हैं भगवान कृष्ण से कि हे भगवान, यदि कोई व्यक्ति ये निराकारवाद, नास्तिकवाद, इस तरह के जो झूठे वाद हैं, दर्शन हैं, झूठे मानसिकताएं हैं, इनको यदि त्यागता है और फिर अपना जीवन भगवान की सेवा के लिए व्यतीत करता है, विशेष रूप से जीवन्ति जीता है, कैसे जीते हैं ये लोग, सन्मुखरिताम भक्तों के मुख से भवदीय वार्ताम आपकी कथाएं सुनता है, आपके नाम सुनता है, यदि कोई इस प्रकार से जीता है, स्थाने स्थिता और अपने स्थान में रह के ईमानदारी से परिश्रम करता है, स्थाने स्थिता तनुवान मनोभीर अपने तन से, अपने मन से, अपने वाचा से वो भगवान की सेवा करने में व्यस्त रहता है, तो फिर वो निश्चित ही भगवान के धाम को प्राप्त होने का अधिकारी हो जाता है। और भगवान को ऐसे मानसिकता से, ऐसे कार्यकलापों से भगवान को जीत सकता है। भगवान ऐसे व्यक्ति के भक्ति से और सेवा भाव से बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। तो जो हमारे भक्तों में से व्यापार करते हैं, आपको भी श्रद्धा होनी चाहिए कि इतना व्यापार खुला नहीं रखना चाहिए कि भगवान के लिए कोई समय ना हो। आखिर आप जितना ज़्यादा परिश्रम करेंगे भी तो ऐसा हमें नहीं सोचना है कि हम बहुत ज़्यादा परिश्रम करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। भाग्य में जितना लिखा उतना मिलेगा, और यदि ज़्यादा मिला भी हमें जानना चाहिए कि जाएगा भी बाहर ज़्यादा कैसे जाएगा, डॉक्टर के बिल में जाएगा, दवाइयाँ खरीदने में जाएगा, कहीं कोई ना कोई और दूसरे मामले में जाएगा, खर्च उतने ही ज़्यादा होंगे, मूल जो हमें मिलना है उतना मिलेगा। तो क्यों हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ें, क्यों हमारे भक्ति को बिगाड़ें, क्यों हमारे पारिवारिक शांति को बिगाड़ें। इसलिए ज़्यादा लोभी नहीं होना चाहिए भक्त को, परिश्रमी होना चाहिए, जितना उचित है, जितना आवश्यक है अवश्य उतना परिश्रम करना चाहिए, परंतु उसे अधिक नहीं। और एक बात जहां तक भरण पोषण का प्रश्न है वो ये है कि संसार में भगवान ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है हमारे भरण पोषण के लिए। देखिए, हम जो अन्न आदि लेते हैं ना, चावल गेहूं हम खाते हैं, ज्वार, सब कितनी चीजें खाते हैं जिनसे कि हमें पौष्टिकता प्राप्त होती है, वो भी तो भगवान ने ही दिया है ना प्रकृति में। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, तो सारे प्राणी जो हैं वो अन्न पर जीते हैं, अन्न नहीं मिलेगा तो जीवन यापन नहीं हो पाएगा। परंतु ये अन्न किसने दिया है, भगवान ने अपने प्रकृति में प्रदान किया है। ये बीज दिए हैं, मिट्टी दी है, हवा दी है, प्रकाश उष्णता आदि है जिसके द्वारा ये बीज उग के फिर पौधे बन जाते हैं, फिर उसमें से और बीज मिलते हैं, गेहूं आदि हमें मिल जाता है, और बारिश जो आती है वो भी भगवान देते हैं। जितने भी चीजें हैं जिनके ऊपर हम निर्भर हैं वो सब भगवान के द्वारा प्रदत्त हैं, प्रकृति के उपहार हैं, और प्रकृति तो भगवान के नियंत्रण में चलती है। सब्जियां, हम इतने स्वादिष्ट स्वादिष्ट सब्जियां खाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, पुष्णामि च औषधि सर्वाः सोमो भूतमा रसात्मकः। आपने शायद सुना होगा भगवद गीता के किसी प्रवचन में, या आपने पढ़ा भी होगा भगवद गीता। भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो सब्जी होते हैं औषधि, उनका जो स्वाद होता है उसका कारण है चांद की किरणें। चांद की किरणों से सब्जियां वो ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाती हैं। सोमो भूत्वा रसात्मक है, रसात्मक है मतलब है कि उनका जो स्वाद है वो सब्जियां और भी रसमय हो जाती हैं। तो भगवान कहते हैं पुष्णमी च औषधि सर्वा, जितने भी औषधि सब्जी आदि हैं, मैं सोमदेव को चंद्रदेव को शक्ति प्रदान करके इन सब्जियों को मैं बहुत स्वादिष्ट बनाता हूँ। उसी तरह से जो फल हैं उनका भी स्वाद कहाँ से आता है, भगवान कृष्ण से आता है। न केवल भगवान ने हमें सब्जियाँ फल आदि प्रदान किए हैं, उनके भीतर जो स्वाद है जिससे जिसका जिसको चख के हम इतने संतुष्ट होते हैं और जिसके द्वारा हमारे शरीर का पोषण होता है, वो भी भगवान कृष्ण से आता है। हमें जल भी चाहिए पीने के लिए, रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। जो जल का जो स्वाद है वो बहुत पौष्टिक होता है और संतुष्टि पैदा करने वाला होता है। देखिए, हम समुद्र का जल नहीं पी सकते, बहुत खारा होता है। तो सच्चा जल जो है, जो पेय जल है, वो उसका स्वाद भगवान कहते हैं वो मुझसे आता है, वो मैं हूँ। शुद्ध जल की शुद्धता और उसकी पवित्रता, उसका जो स्वाद है वो भगवान कृष्ण से आता है, और पानी के बिना तो कुछ नहीं होता है। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने इतनी सारी व्यवस्थाएं की हमारे भरण पोषण के लिए। सारे प्रकृति इस बात का सबूत है कि भगवान ने भरपूर व्यवस्था कर ली है हमारे भरण पोषण के लिए। परंतु यदि हम भगवान और प्रकृति के कानून से, के सहयोग से रहें, तो फिर सब ठीक रहेगा। यदि हमने प्रकृति का शोषण करने का प्रयास किया तो फिर हमारे भरण पोषण की व्यवस्था में असंतुलन हो जाएगा, फिर गड़बड़ी हो जाएगी। और जब भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलता भी है, सब्जियां, फल, अन्न, पानी इत्यादि, फिर भी खाने के बाद क्या होता है, पचन की आवश्यकता है ना। केवल यदि भोजन हम सोचेंगे कि भरण पोषण के लिए हमें बहुत स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन चाहिए, तो ठीक है, व्यंजन सारे तैयार हो गए, लेकिन उसके बाद खाना चाहिए। खाने से पेट में पचन होना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा, कि मैं प्राणी नाम देहमाश्रितः, मैं हर एक प्राणी के देह में वैश्वानर के रूप में विराजमान हूँ। वैश्वानर अर्थात जठर अग्नि। हमारे पेट के अंदर भी अग्नि होती है, और वो अग्नि नहीं होगी तो कुछ भोजन का पचन नहीं होगा। जब जठर अग्नि कमजोर होती है उसे मंदाग्नि कहते हैं, तो हमें वैद्य के पास जाना पड़ता है, पचन नहीं हो रहा है, फिर वो कोई दवाई देता है जिससे कि हमारी जठर अग्नि बहुत मजबूत हो जाए, अच्छी हो जाए, प्रज्वलित रूप से जलने लगे हमारे पेट में। पचन कितना आवश्यक है, भरण पोषण के कार्य में पचन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। वैसे आयुर्वेद में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने भोजन को जानता है तो वो सही तरह से सब कुछ कर सकता है, क्योंकि भोजन में ही स्वास्थ्य है। अच्छा, सही तरह का भोजन हम लेंगे, सही समय पर, सही मात्रा में, सही तरह से उसको पकाएंगे आदि, तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। परंतु उतना ही नहीं, आयुर्वेद की दृष्टि से भोजन पोषण का कारण अवश्य है, परंतु जो भी हम खाते हैं वो भोजन नहीं है। जो भी पचता है हमारे पेट में वो भोजन है। केवल भोजन खाने से वो भोजन नहीं बनता। जब वो भोजन पेट के अंदर जाएगा और फिर उसका पचन होगा तब वो पोषण का कारण बनेगा, ताकत प्रदान करेगा शरीर को। परंतु यदि पोषण, यदि वो पचन नहीं हुआ तो वही भोजन जो है वो विष बन जाएगा। इसको आम कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में। आम मतलब खाने वाला आम, वो नहीं, आप उस आम नहीं, आम मतलब यहाँ विष। वो पेट में विष बन जाता है और सारे बीमारियों का मूल कारण हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार बीमारियों का मूल कारण है पेट और पचन। पचन ठीक हो सब कुछ ठीक होगा। तो भगवान कहते हैं कि ये पचन की शक्ति जो है ये मुझसे आती है, मेरी शक्ति है। प्राणापान समायुक्त, ये जितने भी प्राण हैं जैसे जो कि पचन शक्ति आदि, पचन आदि क्रियाओं का निर्देशन करते हैं, तो वो मैं उनको संतुलित रखता हूँ। इस तरह से भगवान कृष्ण ने हमारे भरण पोषण के लिए कितनी सारी व्यवस्था की है। वो कहते हैं पचाम्यन्नम चतुर्विधा, मेरे द्वारा प्रदत्त शक्ति के कारण पेट के अंदर जितने भी अन्न है वो पच जाता है। चतुर्विधम, चार प्रकार के भोजन होते हैं ना, एक तो चबाने वाला, दूसरा चाटने वाला, तीसरा पीने वाला और फिर चूसने वाला। ये चार प्रकार के खाद्य और पेय पदार्थ होते हैं। तो ये चारों प्रकार का पचन जब तक शरीर में ना हो तब तक भरण पोषण हमारा ठीक से नहीं होगा। तो इस सारी व्यवस्था, बाहर की व्यवस्था, शरीर के अंदर की व्यवस्था, सब कुछ भगवान ने कर रखा है। तो इसलिए हमें क्यों चिंता करनी चाहिए? भगवान के नियमों के अनुसार यदि हम चलेंगे तो हमारे लिए जीवन में भरण पोषण की समस्या नहीं आएगी, बाहर से ना, बाहर से ना अंदर से। वैसे कितने सारे उदाहरण हैं। एक बार जब नारद मुनि जंगल में जा रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही क्रूर शिकारी को देखा। उसका नाम था मृगारी। वो अपने तीरों से जानवरों को आधा मार डालता था और वो बेचारे जानवर तड़प तड़प के फिर बहुत लंबे समय तक तड़पते थे और तड़प के फिर मर जाते थे बेचारे। तो नारद मुनि जब आए तो जिन पशुओं की हत्या ये शिकारी करना चाहता था वो सावधान होकर नारद मुनि के आने की आवाज़ सुनकर वो भाग गए। तो वो शिकारी क्रोधित हो गया, बाहर आए कि आप यहाँ आए और आपकी आवाज़ सुनकर सारे जानवर भाग गए। तो नारद जी ने उनसे कहा कि देखो, इस तरह से क्रूर होके जानवरों को मारना ये अच्छा नहीं है, और न तुम केवल मार रहे हो, उनको तुम आधा मार के छोड़ रहे हो। कितने तड़प तड़प ये लोग मर रहे हैं बेचारे, इतना तुम कष्ट दे रहे हो दूसरे प्राणियों को, तो इसके लिए तुम तो नरक में जाओगे। तो मृगारी कहने लगा कि मैंने तो केवल मेरे पूर्वजों से सीखा है, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, ये सब ऐसे ही करते थे, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं ऐसे पशुओं की हत्या करना बंद कर दो। लेकिन पशुओं की हत्या बंद करूंगा तो मेरा भरण पोषण कैसे होगा? तो नारद मुनि ने कहा जप करो, बैठो, मैं तुम्हें उपदेश देता हूँ। सबसे पहले अपने पास जो भी है वो देकर आ जाओ और यहाँ तुलसी का पौधा लगाओ, तुलसी के पास बैठो और भगवान कृष्ण का नाम लो। भगवान कृष्ण का नाम जप करते रहो और तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। कहाँ से मिल जाएगा? कोई चिंता नहीं करना, भगवान ने वचन लिया है कि वो अपने भक्तों का भरण पोषण करते हैं, ये जिम्मेदारी भगवान की है। तो मृगारी के कई दुर्गुण थे, परंतु ये एक अच्छा सद्गुण था कि उसे नारद मुनि जैसे महान वैष्णव के बातों में श्रद्धा हुई। नारद मुनि की बातें उन्होंने पूरी तरह से मान ली और मानकर क्या किया, मानकर अपना सब कुछ त्याग दिया, तुलसी का पौधा बोया। तुलसी के पौधे के पास बैठ के वो भगवान कृष्ण के नामों का जप करने लगा। और उसके मन में शुरुआत में तो प्रश्न था, यह संशय था कि मेरा भरण पोषण केवल जप करने से कैसे होगा, परंतु भगवान भी सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हैं। तो आसपास के गांव में रहने वाले लोग ये मृगारी को अच्छी तरह से जानते थे, अरे ये व्यक्ति इतना क्रूर है। परंतु जब उन्होंने देखा कि मृगारी के चरित्र में इतना परिवर्तन हुआ है, उसके जीवन शैली में, उसकी बोलचाल में, रहन सहन में इतना परिवर्तन हुआ है, तो वो सारे के सारे आश्चर्यचकित हो गए। खबर फैल गई सारे गांव में, आसपास के गांव में। गांव में रहने वाले लोग सब आए मृगारी का दर्शन करने के लिए कि इतना बड़ा पापी, जो इतना क्रूर व्यक्ति, अब इतना बड़ा संत हो गया है, अब केवल भगवान का नाम ले रहा है। और वो फिर कुछ न कुछ भेंट लेकर आते थे उसके पास, कोई चावल लेके आता, कोई गेहूँ लेके, कोई सब्जी लेके, कोई फल लेके, ऐसे जितने भी मृगारी की आवश्यकताएं थीं उससे कहीं गुना ज़्यादा जो पदार्थ हैं, सामग्री है, वो लोग आके दे देते थे। इतना मिल गया मृगारी को कि मृगारी को दान में सब कुछ देना पड़ा, कि उनके लिए उसके भरण पोषण के लिए क्या आवश्यकता थी, बस जो एक आदमी के लिए चाहिए था उतना रखा, बाकी सब दान में दे दिया। पर मनुष्य प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं ईशोपनिषद के तात्पर्य में कि मनुष्य बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके रखना चाहता है, भगवान के जो व्यवस्था है उस पर श्रद्धा नहीं रखता है वो, इसलिए भर भर के वो बहुत ज़्यादा रखता है कि कल का भरोसा क्या है, कल क्या पता क्या होगा। जब पक्षियाँ होती हैं, आप उनको एक अनाज की बोरी भी रख दो और अपने दो चार आठ दस दाने खा के उड़ जाएंगे। आपने कभी देखा है कि पंछी जो है मिलजुल कर एक दूसरे के साथ सारे बोरी का बोर उठा के अपने घोंसले में ले जाते हैं कि कल के लिए व्यवस्था करें? नहीं, कल की बात कल देखते हैं। तो मृगारी ऐसे रहता था तो उसके भरण पोषण की समस्या समाप्त हो गई। किसने देखभाल किया? भगवान ने देखभाल किया। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं, जैसे दुर्वासा मुनि जब पांडवों के पास गए, जबकि वो वनवास में रह रहे थे, वनवास में थे, तो अपने 10,000 शिष्यों के साथ में गए, परंतु अक्षय पात्र के द्वारा, भगवान की कृपा के द्वारा वो सारी व्यवस्था हो गई, उनका पेट भर गया। तो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का देखभाल अवश्य करते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, परंतु सबसे महत्वपूर्ण भगवान श्री कृष्ण के भरण पोषण का है वो है कि वो हमारी भक्ति का पोषण करते हैं। हमारे भरण पोषण का प्रश्न जब आता है तो हमें केवल शरीर के भरण पोषण का नहीं सोचना चाहिए, हमारे आत्मा का पोषण क्या है इसका सोचना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान हमारे भक्ति की रक्षा करते हैं। आखिर शरीर का विनाश आज नहीं तो कल होगा, परंतु हम कितने भाग्यशाली हैं कि इतने लाखों लाखों जन्मों के बाद हमें एक ऐसा मनुष्य देह मिला है, भक्तों का संग मिला है और भगवान की भक्ति करने का सुअवसर मिला है। तो ये जो बहुत अनमोल चीज है, जो बहुत ही दुर्लभ है, जिसे हमें अनेक लाखों 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 जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है, उसकी रक्षा करना, उसका पोषण करना, ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक जगह तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिस प्रकार से जानवर या पक्षी इत्यादि अपने संतानों का, बच्चों का देखभाल करते हैं, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी भक्तों का देखभाल करते हैं। दर्शन ध्यान संस्पर्शैर मत्स्य कूर्म विहंगमाः स्वामपत्यानि पुष्णन्ति तथाहम् अपि पद्मजा। कि हे पद्मजा, भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं कि हे कमल पुष्प के ऊपर जन्म होने वाले ब्रह्मा जी, जिस प्रकार से मत्स्य एक मछली अपने बच्चे का पोषण करती है, पुष्णन्ति ये सब करते हैं, कैसे करते हैं, दर्शन केवल देख के अपने बच्चे की ओर, अपने अंडे की ओर केवल मछली देखती है, केवल अपने दर्शन से, अपने दृष्टि से वो अपने बच्चों का पोषण करती है। दर्शन ध्यान, ध्यान से कूर्म अर्थात वो कछुआ वो जमीन पे अपने अंडे लग देता है, कछुआ फिर से पानी में आता है, पानी में आके फिर ध्यान करता है अपने अंडों के ऊपर, अपने संतानों के ऊपर, उस तरह से उनका पोषण करता है ध्यान से। संस्पर्शैर स्पर्श से कौन करता है, विहंगमाः जो पक्षी होते हैं वो अंडे अंडे देते हैं, अंडे के ऊपर बैठ जाते हैं, स्पर्श करते हैं, बच्चों का भी स्पर्श करते हैं। इस तरह से स्पर्श से स्वानी अपत्यानी अपने बच्चों के पुष्णन्ति का पोषण करते हैं। तथा अहम् ठीक उसी तरह से मैं भी मेरे भक्तों का पोषण करता हूँ हे ब्रह्मा जी। कितनी सुंदर बात है ये पद्म पुराण का एक श्लोक है। हालांकि भगवान अपने वैकुंठ लोक में बैठे हैं और हम यहाँ पृथ्वी लोक पर हैं, फिर भी भगवान हम सबका भरण पोषण कर रहे हैं दूर से। हालांकि वो बहुत निकट भी हैं हमारे हृदय में, परमात्मा के रूप में भी हैं, हर अणु में भी हैं, हम उनको नहीं पहचान सकते। जिस प्रकार से अंडे में होने वाला जो जंतु है, जो प्राणी है, वो नहीं जानता कि मेरे माता पिता मेरे हैं, वो दर्शन करके, ध्यान करके, स्पर्श करके मेरा पोषण कर रहे हैं, उनको नहीं पता, परंतु हो रहा है पोषण। ठीक उसी तरह से भक्तों को भी या अभक्तों को भी पता नहीं चलता है कि किस प्रकार से भगवान हमारा भरण पोषण कर रहे हैं। केवल दर्शन करके, केवल ध्यान करके, शुभेच्छा से और कभी कभी स्पर्श करके भगवान सबका और विशेष रूप से उनके भक्तों का भरण पोषण करते हैं। भक्ति के भरण पोषण करने का मतलब है कि हर परिस्थिति में, जीवन के उतार चढ़ाव में, भक्ति में हमारी श्रद्धा कभी कमजोर या कोमल हो भी जाए, फिर भी किसी न किसी तरह से वो हमारे श्रद्धा की और भक्ति की रक्षा करते हैं। कोई न कोई भक्त हमारे पास आते हैं और हमारी श्रद्धा को पुनः स्थापित करते हैं। कोई न कोई ऐसी घटना अवश्य होती है जिससे हम पुनः श्रद्धावान बन जाते हैं। इसलिए हमारे हृदय में वो विश्वास हमेशा होना चाहिए कि जब हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त बने हैं तो हर दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और सबसे महत्वपूर्ण भक्ति के दृष्टि से भगवान हमारा देखभाल करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, हमारा भरण पोषण हर स्तर पे, भौतिक और आध्यात्मिक स्तर पे भगवान निश्चित रूप से करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।